server555.com audio production. Sir Arthur Conan Doyle's Speckled Band. میں نے گزشتہ 8 سالوں کے 70 کے قریب کیسوں پر نظر ڈالی جو کہ میرے دوست شرلاک ہومز نے اپنی ذہانت سے حل کیے، جن میں ٹریجک، کومک اور بہت بڑی تعداد میں حیران کر دینے والے کیس شامل تھے۔ یہ کیس شرلاک ہومز نے دولت کے حصول سے زیادہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے حل کیے۔ ہر وہ کیس جس میں غیر معمولی واقعہ نہ ہوتا، شرلاک ہومز اسے لینے سے ہی انکار کر دیتا۔ ان کیسز میں سب سے عجیب کیس سرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ تھے رائلٹ آف سٹاک مورین۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نئی شرلاک ہومز سے جان پہچان ہوئی تھی۔ میں غیر شادی شدہ تھا اور بیکر سٹریٹ میں ہومز کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ میں اس کیس کو پہلے اس لیے منظر عام پر نہیں لا سکا کیونکہ اسے پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ جس سے وعدہ کیا وہ عورت پچھلے مہینے وفات پا گئی، اور وعدہ یہی تھا کہ اس کی زندگی میں یہ کسی کو نہیں بتایا جائے گا۔ ہاں، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے جو کہ ڈاکٹر گرائمز بی رائلٹ کی موت کی وجہ تھے۔ اپریل کا مہینہ تھا جب ایک صبح شرلاک ہومز نے مجھے جگایا۔ وہ صبح دیر سے اٹھنے کا عادی تھا، مگر اس وقت صرف 7:15 تھے۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، چنانچہ میں نے اٹھنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ تمہیں جگانے پر مجھے افسوس ہے، مگر مسز ہڈسن نے مجھے جگایا اور میں نے تمہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا آگ لگ گئی ہے؟ نہیں، ایک کم عمر خاتون پریشانی کی حالت میں ملنے آئی ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ جب کوئی خاتون اتنی صبح ملنے آئے اور ملاقات پر اصرار کرے تو معاملہ ضرور سنجیدہ ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس خاتون سے ملنا پسند کرو گے۔ ہاں ہاں، ضرور، میں تو خود ان معاملات میں آخری حد تک دلچسپی لیتا تھا۔ ہم دونوں عورت کے پاس موجود تھے۔ ہومز بولا، گڈ مارننگ، واہ شاندار آگ جل رہی ہے، اور آپ کو جلد ہی گرم گرم کافی ملے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سردی سے کانپ رہی ہیں۔ میری کپ کپی کی وجہ سردی نہیں ہے، پھر خوف، دہشت اس کپ کپی کی وجہ ہے۔ عورت کے چہرے سے بھی اس کے خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ 30 سال کی ہوگی، مگر بال عمر سے پہلے ہی سفید ہونے والے تھے۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں، جلد ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ صبح جلدی اٹھیں، ڈاگ کارٹ پر اسٹیشن پہنچیں اور پھر ریل کے ذریعے یہاں آئیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے لباس میں لگی مٹی اور ہاتھ میں پکڑے ٹکٹ سے۔ سر، حالات ایسے ہی رہے تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ دنیا میں میری مدد کرنے والا ایک محبت کرنے والے انسان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نے آپ کے متعلق مسز فیرنٹوش سے سنا، انہوں نے ہی مجھے آپ کا ایڈریس دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے پراسرار اور عجیب و غریب حالات میں آپ میری مدد کریں گے۔ مہینے تک میری شادی ہو جائے گی، پھر میرے پاس کافی رقم ہوگی جو میں آپ کے معاوضے کے طور پر آپ کو دے سکوں گی۔ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، سراغ رسانی میرا شوق ہے اور یہی میرا معاوضہ۔ آپ چاہیں تو جب بھی مناسب خیال کریں، صرف اخراجات دے سکتی ہیں۔ مسٹر ہومز، میں نے سنا ہے کہ آپ انسان کے اندر چھپے ہوئے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں۔ خطرہ ہے، مگر کہاں یہ معلوم نہیں۔ مجھے جو خوف ہے، اس شک کی بنیاد بہت معمولی چیزوں پر ہے۔ میں نے جب اپنے بہت چاہنے والے کو اس بارے میں بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ صرف میرا شک ہے اور کچھ نہیں۔ زبان سے تو اس نے یہ بات نہیں کہی، مگر اس کی تسلیوں نے بتایا کہ اس کی یہ سوچ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملوں کہ آپ کوئی مفید مشورہ دیں۔ میرا نام ہیلن سٹونر ہے، میں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہتی ہوں جو کہ انگلینڈ کے بہت قدیم خاندان کے آخری فرد ہیں۔ یہ خاندان کبھی انگلینڈ کے امیر ترین خاندانوں میں سے تھا، مگر فضول خرچیوں اور جوئے وغیرہ نے تمام جائیداد ختم کی اور اب صرف چند ایکڑ زمینیں ہی بچی ہیں، اور 200 سالہ قدیم گھر جس پر بھی قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ میرے ستیلے باپ نے خراب حالات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور پریکٹس کے لیے کلکتہ چلے گئے۔ وہاں وہ کامیاب ڈاکٹر ثابت ہوئے، مگر وہاں چوری کے شبے میں انہوں نے غصے کی حالت میں اپنے باورچی کو مارا، اور اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ سزائے موت سے تو وہ بچ گئے، مگر طویل قید کی سزا ہوئی۔ रहा होने पर वो इंग्लैंड वापस आ गए, नाकाम और मायूस इंसान के तौर पर। डॉक्टर रॉयलट ने इंडिया में ही मेरी वालदा से शादी की, यानी मेजर जनरल स्टोनर की कम उम्र बेवा से, जो बंगाल आर्टिलरी से ताल्लुक रखते थे। मैं और मेरी अकलौती बहन जूलिया में बहुत मोहब्बत थी। माँ की दूसरी शादी के वक्त हम जुड़वां बहनों की उम्र सिर्फ 2 साल थी। मेरी वालदा की जायदाद बहुत ज़्यादा थी, कम अज़ कम $1,000 सालाना, मगर ये सब कुछ सौतेले वालिद के सुपुर्द कर दिया गया। हम बहनों को हमारे हिस्से की रकम शादी के बाद मिलना थी। इंग्लैंड वापसी के कुछ अरसे बाद मेरी वालदा दुनिया से चली गईं। ये 8 साल पहले की बात है। रेलवे एक्सीडेंट ने उनकी जान ली। उसके बाद सौतेले बाप ने अपने कदीम घर में रहने का फैसला किया। माँ की तरफ से काफ़ी रकम मिली थी जिसे अच्छा गुजारा हो सकता था, मगर वालिद के मिजाज में ख़तरनाक तब्दीली रूनमा हुई। इलाके के लोग खुश थे कि कदीम ख़ानदान के फ़र्द उस इलाके में रहने आए हैं, मगर मेरे सौतेले बाप ने किसी से भी मिलना जुलना पसंद ना किया, बल्कि अपने घर में ना किसी को आने की इजाज़त दी, ना किसी से मिलने गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो उनकी ज़मीनों में से गुज़रता उससे शदीद लड़ाई हो जाती। उनके ख़ानदान में तशद्दुद की बीमारी की अलामात पहले से मौजूद हैं, मगर इंडिया के मौसम की वजह से उनमें ये बीमारी बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इलाके में वालिद साहब ने लड़ाइयाँ की, पुलिस तक बात जा पहुँची। अब तमाम इलाका उनसे खौफजदा है। वो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर हैं, गुस्से पर काबू पाना उनके लिए नामुमकिन है। पिछले हफ्ते उन्होंने एक आदमी को मारा और नदी में फेंक दिया, जिसे मैंने अपनी तरफ से रकम दी और मामला ख़त्म करवाया। आवारा जिप्सियों के अलावा उनका अब कोई भी दोस्त नहीं है। इन जिप्सियों को उन्होंने अपनी ज़मीन पर कैंप लगाने की इजाज़त दे रखी है, और उनके साथ हफ्तों महीनों तक वो आवारा गर्दी करने भी जाते हैं। इंडिया के जानवरों का भी उन्हें शौक है। इस वक्त भी घर में एक चीता और बनमास मौजूद है। वो आज़ादी से घूमते फिरते हैं और अपने मालिक की तरह इलाके के लोगों को खौफजदा रखते हैं। इन हालात की वजह से मैं और मेरी बहनें जूलिया मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुलाजिम हमारे पास ठहरता नहीं था। मेरी बहन अपनी मौत के वक्त 30 साल की थी, मगर मेरी तरह उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। ओह, तो आपकी बहन मर चुकी है? हाँ, 2 साल पहले। उसकी मौत के बारे में ही मैं आपसे बात करने आई हूँ। आपको मैंने जो हालात बताए उनकी वजह से हम अपनी उम्र के लोगों से कहाँ मिल सकते थे। हाँ, हमारी एक आंटी है, मेरी अम्मी की बहन, और हमें इजाज़त थी कि वहाँ जा सकें। मेरी बहन वहाँ एक मेजर से मिली और उन दोनों की शादी तय हो गई। बाप को ये बात मालूम हुई, मगर उसने कोई एतराज़ ना किया। मगर शादी से 2 हफ्ते पहले ये अफसोसनाक हादसा हुआ और मेरी बहन दुनिया से रुखसत हुई। शर्लक होम्स आंखें बंद किए कुर्सी पर बैठा था। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर लड़की को देखा और कहा, ज़रा तफसील से बताएं क्या हुआ था। हाँ, हर चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। हमारे मकान की निचली मंजिल पर पहला कमरा डॉक्टर रॉयलट का है, दूसरे में मेरी बहन और तीसरे में मैं रहती हूँ। इन तीनों के दरमियान कोई रास्ता नहीं, मगर दरवाजे सबके ही एक बरामदे में खुलते हैं। तीनों की खिड़कियां पिछली जानिब के लॉन बाग में खुलती हैं। जिस दिन वो मरी, उस दिन डॉक्टर रॉयलट जल्दी अपने कमरे में चले गए, मगर सोए नहीं, क्योंकि उनके इंडियन सिगार का शदीद धुआं मेरी बहन के कमरे में आ रहा था। चुनाचे वो मेरे कमरे में आ गई और हमने बातें की। 11 बजे वो दोबारा अपने कमरे में जाने लगी, मगर रुकी और बोली, हेलन, तुमने रात को किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनी है?
नहीं, कभी नहीं।
मगर मुझे रात के 3 बजे किसी के सीटी बजाने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। मेरी नींद कमज़ोर है और इस आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती है, मगर मालूम नहीं ये कहाँ से आ रही होती है, साथ के कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा शायद तुमने भी इस आवाज़ को सुना हो। नहीं, मैंने नहीं सुना। शायद ये जिप्सियों की तरफ से आती हो। हाँ, शायद, मगर लॉन से आती तो तुम भी ज़रूर सुनती, मगर मैं गहरी नींद सोती हूँ ना। खैर छोड़ो। वो मुस्कुराई और कुछ देर बाद उसके दरवाजे में चाबी घुमाने की आवाज़ आई। इंडीड, क्या आप हमेशा ताला लगाकर सोती हैं?
हाँ, हमेशा।
क्यों? मैंने बताया ना कि घर में चीता और बनमांस हैं, वो भी आज़ाद घूमते हुए, तो ख़तरा रहता है, हिफाजत के लिए ताला लगाते हैं।
बिल्कुल ठीक, बराए मेहरबानी बयान जारी रखें। उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रही थी कि कितनी बदकिस्मत हूँ। जुड़वा होने की वजह से जूलिया के साथ गहरा ताल्लुक था। रात खतरनाक लग रही थी, बाहर तेज हवा के चलने से आवाजें पैदा हो रही थीं और बारिश खिड़की से टकरा रही थी। अचानक एक औरत की खौफनाक चीख सुनाई दी। मैं अपनी बहन की आवाज सुनकर बरामदे में भागी। वहां से हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी, जिसका जिक्र मेरी बहन ने भी किया था। फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरी बहन के कमरे का दरवाजा खुला और फिर मेरी बहन का खौफजदा चेहरा नजर आया। उसे मदद की जरूरत थी और जिस्म इधर उधर डगमगा रहा था जैसे कोई शराबी झूम रहा हो। मैंने उसे सहारा दिया मगर वो जमीन पर गिरी। शदीद दर्द की हालत में वो तड़प रही थी। पहले लगता था कि वो मुझे नहीं पहचान रही है, मगर फिर ऐसी आवाज में बोली जो मुझे कभी नहीं भूल सकती। Oh my God, Helen, it was the band, the speckled band. उसने कुछ और भी कहने की कोशिश की और डॉक्टर रॉयलट के कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने जल्दी से अपने सुतेले बाप को आवाज दी जो तेजी से वहां आया, मगर उस वक्त तक मेरी बहन बेहिसो हरकत हो चुकी थी। वो जल्द ही मर गई। इस तरह मेरी मोहब्बत करने वाली प्यारी बहन मुझसे जुदा हुई। एक मिनट, क्या आपको यकीन है कि जो आवाजें आपने सुनी उस वक्त वो किसी धात की और सीटी की आवाजें थीं? मुकम्मल यकीन से इस बारे में कहती हैं। हाँ, मगर मेरा वहम भी हो सकता है। क्या उस वक्त आपकी बहन ने कपड़े पहने हुए थे? नहीं, वो नाइट ड्रेस में थी। उसके हाथों में माचिस थी। यानी उसने लाइट जलाकर कुछ देखने की कोशिश की थी। अहम बात है। मौत की तहकीक के क्या नतीजे बरामद हुए थे? डॉक्टर रॉयलेट की बदनामी की वजह से गहरी तहकीक हुई, मगर मौत की वजह मालूम ना हो सकी। दरवाजे में ताला लगा हुआ था और दूसरी जानिब खिड़की भी मजबूती से बंद थी। दीवारें बहुत मजबूत हैं, हत्ता के फर्श को भी चेक किया गया। चिमनी भी ऊपर से हिफाजत से बंद की गई थी। चुनाचे साबित हो गया कि बहन कमरे में अकेली थी। दूसरे किसी किस्म के तशद्दुद के निशान भी मौजूद ना थे। जहर का सोचा गया था? डॉक्टर ने मुकम्मल जायजा लिया था, मगर बेसूद। आपने क्या नतीजा खस किया था? मेरा ख्याल है कि खौफ और नर्वस शॉक उसकी मौत की वजह बने, मगर किस चीज का खौफ था ये मालूम ना हो सका। क्या जिप्सीज उस वक्त वहां थे? हाँ, वो वहां मौजूद ही रहते हैं। और बैंड, स्पेकल्ड बैंड से आपने क्या नतीजा निकाला? कभी मैं सोचती हूँ कि वो अपने हवास ही में नहीं थी, इसलिए ऐसी बात की। शायद वो बैंड ऑफ पीपल के मुतालिक ये बात कह रही थी, या फिर शायद उन जिप्सीज के मुतालिक कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा रुमाल अपने सरों पर बांधते हैं। होम्स ने इस तरह सर को हिलाया जैसे इन अंदाजों से इत्तफाक ना रखता हो। 2 साल गुजर गए, कितनी अकेली जिंदगी गुजार रही हूँ मैं उस वक्त से। मगर अब एक माह पहले एक अजीज दोस्त ने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। पर्सी आर्मिटेज उसका नाम है। सुतेले बाप ने कोई इख्तलाफ नहीं किया और मौसम बहार में शादी मुतवक्को है। 2 दिन पहले मरम्मत का काम शुरू हुआ, चुनाचे मुझे अपने कमरे से उस कमरे में सोना पड़ा जहां मेरी बहन मरी थी। वो बिस्तर जहां वो सोई थी। रात को मेरी आंख खुली तो सोच रही थी कि किन खौफनाक हालात में मेरी बहन मरी। अचानक रात की खामोशी में मुझे हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठी और लैंप जलाया, मगर कुछ नजर न आया। रात भर कांपती रही और दिन निकलने पर आपसे मिलने चली आई। आपने बहुत अकलमंदी का काम किया, मगर क्या आपने कुछ छुपाया है? नहीं, कुछ नहीं छुपाया। ये, होम्स ने औरत के हाथ की आस्तीन ऊपर की जहां 4 उंगली और अंगूठे के निशान नजर आ रहे थे। आपके वालिद ने आप पर जुल्म किया है। लड़की का रंग तब्दील हो गया। वो सख्त आदमी है और शायद उन्हें खुद भी इल्म नहीं कि कितने ताकतवर हैं जिस्मानी तौर पर। थोड़ी देर खामोशी रही और होम्स आग की तरफ देख कर कुछ सोचता रहा। बहुत संगीन मामला है, बहुत सी बातों के मुतालिक इल्म हासिल करना जरूरी है। इसी वक्त अभी काम शुरू करना होगा। अगर हम आज आपके घर आए तो क्या कमरों को अंदर से देख सकते हैं? हाँ, डॉक्टर रॉयलट को आज कस्बे में आना था, तो आप ये काम कर सकते हैं। शानदार वॉटसन, हम दोनों चलेंगे। ठीक है, मैं 12 बजे आपका घर में इंतजार करूंगी।
उसके जाने के बाद होम्स ने पूछा, वॉटसन इस बारे में क्या ख्याल है?
बहुत खतरनाक केस है।
होम्स बोला, अगर ये बात दुरुस्त है कि तमाम कमरा बंद था तो यकीनन उसकी बहन वहां अकेली थी।
तो फिर अहम बात यह रह जाती है कि सीटी की आवाज कहां से आई और मरती हुई औरत के अल्फाज स्पेकल्ड बैंड।
शादी से पहले ये वाकयात रूनमा होते हैं, धात की किसी शय की आवाज, सीटी,
इन बातों से नतीजे तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
मगर असल बात क्या है ये जानने के लिए वहां जाना जरूरी है।
मगर उसी वक्त दरवाजा खुला और एक मजबूत आदमी अंदर दाखिल हुआ, लंबा चौड़ा, चेहरा गुस्से में।
तुम में से होम्स कौन है?
मैं हूं।
मैं डॉक्टर ग्राइम्सबी रॉयलेट हूं।
यकीनन तशरीफ रखें।
नहीं, मेरी सुतेली बेटी यहां आई थी। क्या कह रही थी वो तुमसे?
आज कितनी सर्दी पड़ रही है, होम्स ने कहा।
मुझे इधर उधर की बातों में ना लगाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है।
होम्स मुस्कुरा रहा था। जब आप बाहर जाएं तो दरवाजा बंद कर दें।
बाहर तो मैं जाऊंगा मगर बात पूरी करके। मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश ना करो, मैं खतरनाक इंसान हूं।
देखो, उसने सलाख उठाई और उसको मोड़ कर नीचे फेंक दिया। उसके जाने के बाद होम्स ने हल्का सा कहका लगाया,
दिलचस्प इंसान है।
अगर कुछ वक्त और रुकता तो मैं दिखाता कि मैं इस टेढ़ी सलाख को सीधा कर सकता हूँ।
और फिर वाकई थोड़ी मेहनत के बाद होम्स ने उसको सीधा कर दिया।
वॉटसन नाश्ते के बाद इस केस के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे।
नाश्ते के बाद वो चला गया और 1 बजे वापस आया।
मैंने उसकी मरहूम बीवी की वसीयत देखी है।
शादी के बाद बेटियों के पास रकम चली जाती तो आदमी के लिए अपने खराजात पूरे करने भी मुश्किल थे। चुनाचे उसके पास वजह है कि वो कोई कदम उठाए।
बहुत संजीदा मामला है क्योंकि आदमी को इल्म है कि हम इस मामले में पड़ चुके हैं।
चलो उसके घर चलते हैं, रिवॉल्वर साथ ले लो।
सफर के दौरान सूरज चमक रहा था, मौसम शानदार था, मगर होम्स अपनी सोचों में गुम था।
वहां पहुंचकर हमें मिस हेलन स्टोनर मिली जो बहुत खुश हुई।
जब हमने बताया कि उनका सोतेला बाप मिलने आया था तो उसका रंग सफेद पड़ गया।
मेरे खुदाए, उसने मेरा पीछा किया।
हाँ, यही लगता है।
वह अय्यार आदमी है, चालाक आदमी है।
रात को अगर उसने आपको मारने की कोशिश की तो आपको आपकी आंटी के घर पहुंचा देंगे।
चलें अब हमें कमरे दिखाएं।
होम्स लॉन में गया और मुकम्मल तवज्जो से लॉन और कमरे की खिड़कियों का जायजा लेता रहा।
यहाँ आप रहती हैं, ये आपकी बहन का कमरा है और ये डॉक्टर रॉयलेट का।
हाँ बिल्कुल, मगर अब मैं दरमियान में रॉयलेट के कमरे के साथ सो रही हूँ।
ठीक है, हाँ, मगर आपके कमरे को लगता है मरम्मत की जरूरत ना थी।
जबकि जरूरत ना होने पर भी मरम्मत करवाई जा रही है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहाना है कि मुझे दूसरे कमरे में सोने पर मजबूर किया जाए।
हाँ तो ये बात है।
तो यहाँ से दूसरी तरफ बरामदा है जहाँ तीनों कमरों के दरवाजे खुलते हैं,
तो रोशनदान भी होंगे।
हाँ हैं, मगर बहुत ही छोटे, कोई आदमी वहाँ से अंदर नहीं जा सकता।
बिल्कुल सही, आप जरा अपने कमरे में जाएं और खिड़की को मुकम्मल बंद कर लें।
खिड़की बंद होने के बाद होम्स ने दोबारा खिड़की का मुकम्मल जायजा लिया
और खिड़की खोलने की भरपूर कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ।
कमरे अंदर से देखने पर शायद कुछ मदद मिले।
होम्स ने तीसरे कमरे को देखने से इनकार कर दिया और दरमियान के कमरे में गया जहाँ मिस हेलन स्टोनर आजकल सो रही थी और जहाँ उसकी बहन की मौत वाका हुई थी।
कमरे में सामान मौजूद था, सामान पुराना था।
होम्स चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था, ऊपर नीचे देख रहा था।
ये रस्सी कहाँ जा रही है?
उसने बिस्तर के करीब लटकी हुई रस्सी को देखकर पूछा, जिसका सिरा सिरहाने पर तकिए के पास लटक रहा था।
नई लग रही है।
हाँ, चंद साल पहले ही लगाई गई है।
आपकी बहन ने इसको लगाने का कहा होगा?
नहीं, बल्कि उसने तो कभी इसे इस्तेमाल भी नहीं किया था।
होम्स ने जमीन पर रेंगते हुए फर्श को देखना शुरू किया, फिर दूसरी चीजों का जायजा लिया, आखिर में बिस्तर के करीब गया और उसे गौर से देखता रहा।
दीवार के ऊपर नीचे नजर डाली,
बिलाखिर लटकी हुई रस्सी को पकड़ा और झटके दिए, कोई बेल नहीं बजी।
ये तो जाली है, बेमकसद।
दिलचस्प।
अब देखें, ये ऊपर हवा के लिए बनाए गए सुराख के करीब बांधी गई है। हाँ, बहुत अजीब बात है। मैंने तो इसका पहले कभी सोचा भी नहीं, जायजा भी नहीं लिया, मिस हेलन बोली।
अजीब बात है, हवा के लिए सुराख बाहर लॉन में खुलने के बजाय दूसरे कमरे में खुल रहा है।
और फिर ये रस्सी,
हवा का सुराख हवा के लिए नहीं, रस्सी पर घंटी नहीं।
खैर, डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में चलते हैं।
दूसरी चीजों के अलावा वहां लोहे की तिजोरी भी मौजूद थी।
होम्स ने हर चीज का मुआयना किया, फिर तिजोरी के करीब जाकर कहा, इसमें क्या है?
मेरे सुतेले बाप के कारोबारी कागजात।
ओहो, आपने अंदर से देखा है?
हाँ, एक मर्तबा कुछ साल पहले।
क्या यहाँ कोई बिल्ली भी है?
आपने अजीब बात कही है, मैंने इसे देखकर कहा है।
होम्स ने एक प्याली उठाई जिसमें दूध मौजूद था।
नहीं, चीता और बनमांस के अलावा कोई जानवर नहीं।
हाँ, चीता भी तो बड़ी बिल्ली है,
मगर इस प्याली के दूध से तो उसकी खुराक पूरी नहीं हो सकती।
फिर होम्स लकड़ी की कुर्सी के पास गया और गौर से उसका मुआयना किया।
शुक्रिया। हेलो, यहाँ तो दिलचस्प चीज भी मौजूद है।
उसने कुत्ते को मारने वाले कोड़े नुमा रस्सी को देखकर कहा, जो बिस्तर के करीब लटकी हुई थी।
इसकी मौजूदगी क्या साबित करती है?
दुनिया जराइम से भरी पड़ी है, और जब एक पढ़ा लिखा और चालाक शख्स जराइम की दुनिया में दाखिल होता है तो भयानक तरीके अख्तियार करके बहुत आगे निकल जाता है।
मिस हेलन, बहुत कुछ देख लिया, अब लॉन में चलते हैं।
उस वक्त होम्स का चेहरा बहुत संजीदा और परेशान लग रहा था। लॉन में कुछ सोचते हुए बहुत देर इधर उधर चक्कर लगाने के बाद उसने कहा,
मिस हेलन, ये बहुत जरूरी है कि मेरी बातों पर मुकम्मल अमल करें पूरी तरह। मामला बहुत संजीदा है, गलती से आपकी जान भी जा सकती है।
मैं पूरा अमल करूंगी।
सबसे पहले ये कि वॉटसन और मैं आपके कमरे में रात बसर करेंगे।
देखिए, वो दूर गांव की सराय नजर आ रही है।
हाँ, क्राउन नाम है।
आपकी खिड़की वहां से नजर आएगी?
हाँ बिल्कुल।
आप सुतेले बाप से कहें कि आपके सर में दर्द है, और जब बाप कमरे में सोने चला जाए तो अपनी खिड़की खोलें और लैंप से इशारा करें। खिड़की खुली छोड़ दें ताकि हम सराय से आकर उस खिड़की के जरिए आपके कमरे में आ जाएं,
और आप जिस पुराने कमरे में मरम्मत हो रही है वहां चली जाएं। बाकी हमारा काम।
आप क्या करेंगे?
हम उस आवाज का पता चलाएंगे जो आपको परेशान करती है।
मेरा ख्याल है, मैं सोच रही थी कि आपको कुछ इल्म हो चुका है, मिस हेलन ने कहा।
हाँ, शायद कुछ ऐसी ही बात है।
मुझे बताएं, मेरी प्यारी बहन की मौत की क्या वजह थी?
नहीं, पहले तमाम सबूत फिर वजह। अब डॉक्टर रॉयलेट के आने से पहले हम सराय में जाते हैं। गुड बाय एंड बी ब्रेव। क्राउन नामी सराय में हमने कमरा किराए पर लिया। ऊपर की मंजिल के उस कमरे से हेलन स्टोनर का घर साफ नजर आ रहा था।
शाम के वक्त डॉक्टर ग्राइम्स पी रॉयलेट घर आता नजर आया। वो गुस्से में लगता था।
कुछ देर बाद उसके कमरे में लैंप की रोशनी नजर आई।
वॉटसन, आज की रात हमें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
कोई परवाह नहीं, मैं मुकम्मल तुम्हारे साथ हूँ।
खतरे की बात तुमने की, यानी उन कमरों में तुमने कोई खास चीज देख ली जो मेरी नजरों से उजल रही?
वॉटसन, तुमने साफ हवा के लिए बना हुआ रोशनदान देखा जो दूसरे कमरे में खुल रहा था?
हाँ, मगर दो कमरों के दरमियान छोटा सा रोशनदान बनाने में ना तो कोई बुराई है, ना ये बड़ी और अहम बात है।
वो तो इतना छोटा था कि चूहा भी मुश्किल से ही उसमें से गुजर सकता था।
वॉटसन, जब मैं यहाँ आया तो मैं जानता था कि दो कमरों के दरमियान इस तरह का रोशनदान मुझे जरूर मिलेगा।
होम्स, क्या तुम सच कह रहे हो?
हाँ, बिल्कुल सच।
याद करो, हेलन ने कहा कि उसकी बहन रात को सिगार का धुआं महसूस करती थी, तो ये रोशनदान जरूर छोटे साइज का होना चाहिए था, वरना जूलिया के कत्ल की इंक्वायरी में उसका नोटिस ले लिया जाता।
मगर इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है?
वॉटसन, देखो, दो कमरों के दरमियान रोशनदान बनाया गया। उसके साथ एक रस्सी लटकाई गई जो रोशनदान से बिस्तर के सिरहाने तक मौजूद है, और एक औरत मर गई।
होम्स, मुझे तो इन चीजों में कोई ताल्लुक नजर नहीं आता।
वॉटसन, बिस्तर को फर्श के साथ मजबूती से जोड़ा गया था ताकि इसे हिलाया ना जा सके, और रस्सी घंटी बजाने के लिए नहीं लटकाई गई।
होम्स,
मैं चीखा,
अब मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो।
हम वक्त पर पहुंच गए कि एक और जुर्म होने से रोका जा सके। हाँ, भयानक जुर्म। जब एक डॉक्टर जराइम की दुनिया में आता है तो ऐसा जुर्म कर जाता है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उसका दिमाग और मालूमात शानदार होती हैं और हिम्मत भी बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर रॉयलर तो बहुत ही आगे जा चुका है, मगर हम उससे दो कदम आगे हैं। मगर मुमकिन है इस रात हमें खौफजदा कर देने वाली चीज़ों का सामना करना पड़े। वाटसन, सिगार पिएं और हल्की फुल्की गुफ्तगू करें ताकि दिमाग में ताजगी आए। रात 9 बजे घर की तमाम रोशनियां बुझ गईं। 2 घंटे गुजर गए और ठीक 11 बजे हमें रोशनी नजर आई जो हमारे लिए इशारा थी। वाटसन, ये दरमियान वाले कमरे से आ रही है, चलो चलते हैं। होम्स ने सराय के मालिक से कहा कि एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं, देर हो सकती है और हो सकता है कि हम वहां रुक जाएं। अंधेरे रास्तों में ठंडी हवा हमारा इस्तकबाल कर रही थी। हम लॉन में पहुंचकर खिड़की के जरिए घर में दाखिल होना चाहते ही थे कि हमें झाड़ियों में एक बदसूरत बच्चा नजर आया जो हमें देखकर तेजी से भागा। मेरे खुदा, होम्स, ये क्या चीज थी? होम्स खुद भी मेरी तरह हैरान परेशान खड़ा था। फिर उसकी हल्की हंसी की आवाज आई और मेरे कान में उसने कहा, वाह क्या घर है, ये बनमास था। तो इसका मतलब था कि हमें चीते का भी सामना करना पड़ सकता था, इसलिए कमरे में दाखिल होने पर मैंने सुख का सांस लिया। खिड़की आहिस्तगी से बंद की और हल्की रोशनी में कमरे का जायजा लिया और होम्स ने मेरे कान में बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, जरा सी भी आवाज से तमाम मंसूबा खराब हो सकता है। मैंने सर को हिलाकर हाँ में जवाब दिया। हम बगैर रोशनी के बैठेंगे, रोशनी डॉक्टर रॉयलट को रोशनदान से नजर आ सकती है। और हाँ, सोने की कोशिश बिल्कुल ना करना, तुम्हारी जिंदगी का इनसार तुम्हारे जागे रहने पर है। पिस्तौल को तैयार रखो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम कुर्सी पर बैठो और मैं बिस्तर के करीब मौजूद रहूंगा। मैंने हिदायत के मुताबिक अमल किया। होम्स जो बारीक लंबी छड़ी लाया था वो उसने अपने करीब बिस्तर पर रख दी। करीब ही माचिस और मोमबत्ती रखी, फिर लैंप बुझा दिया। हर तरफ अंधेरा छा गया। क्या डराने वाला मंजर था, मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। दूर से कभी कभी किसी परिंदे की आवाज आ जाती। हमें महसूस हुआ कि चीता कमरे से बाहर से गुजरा है, यानी ये खतरनाक चीज बाहर मौजूद थी। एक और आवाज जो हमारे कानों तक पहुंच रही थी वो घड़ी की आवाज थी जो अपनी घंटी से वक्त बताती। 12 बजे, 2 और फिर 3। वक्त कितनी आहिस्तगी से गुजर रहा था और हम बैठे इंतजार कर रहे थे। अचानक रोशनदान से रोशनी नजर आई, मगर फौरन ही बुझ गई। फिर तेल की बदबू से मालूम हुआ कि किसी ने लालटेन जलाई है। किसी के आहिस्तगी से चलने की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। आधा घंटा इसी तरह गुजर गया। फिर अचानक ऐसी आवाज आई जैसे केतली से भाप निकलते हुए आवाज पैदा होती है। इस आवाज का सुना था कि होम्स तेजी से उठा, माचिस जल्दी से जलाई और छड़ी से बेतहाशा रस्सी और रोशनदान पर मारना शुरू किया। वाटसन, तुमने देखा? देखा, मगर मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया था। जब होम्स ने माचिस जलाई थी तो मैंने साफ सीटी बजने की आवाज सुनी थी, मगर ये मालूम ना था कि मेरा दोस्त होम्स किस चीज को इतनी तेजी से मार रहा है। हाँ, मगर मैंने उसका चेहरा देखा जिसका रंग तब्दील था और सख्त खौफजदा। उसने मारना तो बंद कर दिया, मगर रोशनदान की तरफ देखता रहा। फिर उस खामोशी के दौरान उस चीख की आवाज सुनी जो मेरी जिंदगी की ना भूलने वाली आवाज थी। खौफ, तकलीफ और गुस्से में भरी हुई चीख। बाद में पता चला कि बहुत दूर के लोगों को भी वो चीख सुनाई दी थी, जिससे वो घबरा कर अपने बिस्तरों से उठ बैठे। हम भी उस चीख से घबरा गए थे और परेशानी की हालत में एक दूसरे को देख रहे थे। होम्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि काम तमाम हुआ, होम्स ने कहा। शायद ये ठीक ही हुआ। हम कमरे से बाहर आए और डॉक्टर रॉयलट के कमरे में दाखिल हुए। पिस्तौल बिल्कुल तैयार था। कैसा खतरनाक मंजर था, तिजोरी का दरवाजा खुला था और ऊपर लालटेन जल रही थी। नजदीक कुर्सी पर डॉक्टर ग्राइम्स बील रॉयलट बैठा था। उसकी गोद में कोड़ा, रस्सी जिससे कुत्तों वगैरह को मारा जाता है, मौजूद था और उसकी आंखें खौफजदा अंदाज में मुसलसल छत को देख रही थी।
और माथे के करीब धब्बों वाली डोरी लिपटी हुई थी। हमारी मौजूदगी के बावजूद ना उसने कोई आवाज निकाली और ना हरकत की। होम्स बोला, बैंड द स्पेकल्ड बैंड। फिर डॉक्टर रॉयलेट के बालों में से एक सांप का सर बरामद हुआ। वॉटसन, ये इंडिया का सबसे जहरीला सांप है, 10 सेकंड में इंसान को खत्म करने वाला। डॉक्टर ने गड़ा खोदा और खुद ही उसमें गिर पड़ा। इस सांप को वापस उसकी जगह में बंद करते हैं, फिर मिस हेलन को किसी महफूज जगह में पहुंचाएंगे और पुलिस को भी इतला देनी है कि यहाँ क्या हादसा हुआ है। होम्स ने एहतियात के साथ कूड़े की मदद से सांप को उठाया और अपने से दूर रखते हुए तिजोरी में बंद कर दिया। हमने मिस हेलन को इस बारे में बताया और उसे उसकी आंटी के पास पहुंचा दिया। इंक्वायरी हुई जिसमें बताया गया कि खतरनाक पालतू सांप से खेलते हुए डॉक्टर रॉयलेट मारा गया। अगले दिन होम्स ने वापसी के वक्त मुझे बताया कि पहले मैंने जिप्सीज और बैंड को गलत अंदाज में लिया, मगर फिर जब देख लिया कि खतरा बाहर से नहीं आ सकता था तो फिर सही रास्ते पर अपने आप को डाल लिया। रस्सी और रोशनदान जब देखे और ये पता चला कि उनका कोई भी मकसद नहीं तो शक हुआ कि यकीनन ये रास्ता बनाया गया है कि सांप उसके जरिए से भेजा जा सके। फिर डॉक्टर इंडिया के जानवरों से भी तो मानूस था। मैं सही रास्ते पर आ गया कि इस तरह से जो मौत होगी उसको आम टेस्ट की मदद से जाना नहीं जा सकता। सांप का काटा कहाँ नजर आता है। डॉक्टर बेहद खतरनाक और शैतान इंसान था। सीटी के बारे में सुना, यकीनन सांप की ट्रेनिंग की गई थी कि सीटी की आवाज़ सुनकर वापस आ जाए। वो सांप को रोशनदान के जरिए दूसरे कमरे में भेजता था जो रस्सी के जरिए नीचे उतरकर बिस्तर तक पहुंच जाता। फिर किस्मत थी कि सांप सोने वाले को काट ले या छोड़ दे, मगर खुशकिस्मती से जूलिया हर रात बचती रही, मगर फिर बिलाखिर सांप का शिकार बनी। उसके कमरे की कुर्सी पर वो निशानात मैंने देख लिए जिन पर खड़े होकर वो रोशनदान में सांप छोड़ता था। तिजोरी और उस पर रखी गई दूध की प्लेट और कोड़ा, वो चीजें थीं जिन्होंने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। जो आवाज मिस हेलन ने सुनी थी वो जल्दी में तिजोरी बंद करने की थी। जब सब बातें वाजा हो गईं तो मैंने वो कदम उठाए जो तुम्हारे सामने हुए। मैंने जब देखा कि सांप की आवाज आ रही है तो माचिस जलाई और छड़ी से उस पर हमला कर दिया। सांप घबरा कर वापस भागा और जो पहला इंसान सामने आया उसे काटा, और वो उसका मालिक ही था। इस तरह मैं किसी कदर डॉक्टर रॉयलेट की मौत का जिम्मेदार जरूर हूं।
तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com